نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کامیاب انسانوں کے لیے رہنما اصول، اس میں سے آج ہم دوسرا اصول پڑھیں گے، مثبت عزت نفس. پچھلا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مثبت خود آگہی، خود سے آگاہ ہونا، یہ پازیٹیولی اگر ہو تو بہت فائدہ مند دیتا ہے. تو آج ہم عزت نفس کے بارے میں بہت سی باتیں کریں گے. آپ نے اردو میں یہ لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا، ہمارے کلچر میں لفظ عزت بھی ہے، نفس بھی ہے. اب عزت کو لگ دیکھیں تو عزت کیا ہے؟ عزت 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 ہے. ہاں، پیچھے ڈال جائے، اس کے روٹ میں جائیں تو عزیز عزا سے ہے، العزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو عزت غلبے کو بھی کہتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ غالب ہے، العزیز کے لفظ کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو عزت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کا غلبہ ہو جاتا ہے. عزت لفظ کو اگر آپ کبھی دیکھیں تو میرا علم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں سب عزت چاہتے ہیں، اور ہم نے ایک جملہ سنا جی، اپنی عزت اپنے ہاتھ. پر عزت ہوتی کہ غلبہ، جس بندے کی عزت ہوتی ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے، مسخر کر دیتا ہے، لوگوں کے حواس پہ چھا جاتا ہے، لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور نفس کیا ہے؟ وما ابری نفسی ان نفس لامارہ تم بسوئی، یعنی میں نفس کو بے گناہ تو سمجھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. تو اپنی جگہ نفس برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس ہمارا بھی کہتے ہیں. لیکن عزت نفس جب دونوں کو جوڑ لینا تو یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں آپ خود اعتمادی کہیں گے، خود اعتباری کہیں گے، اور عزت نفس بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کی عزت کروانا. اس کو اگر اپوزٹ سے سمجھیں، کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، یہ عربی کا بھی ایک اصول ہے، تو خود فریبی اس کی ضد ہے. تذبذب کا شکار رہنا، شرمیلا پن، آپ اپنے بارے میں شرماتے ہی رہتے ہیں. ہاں، اچھا، جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نا وہ عموماً اس کے بارے میں ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو کوئی اور ہی ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں مطمئن اپنے آپ سے. اور کامیاب شخص ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جی میں تو پھر میں ہوں، یعنی وہ اپنی میں کو عزت دیتے ہیں. تو عزت نفس کیا ہے؟ کہ ایک انسان اپنی عزت کرے. دو لفظ ہوتے ہیں انگلش میں اگر آپ دیکھیں، ایک ہے سیلف ریسپیکٹ اور ایک ہے سیلف ورشپ. سیلف ورشپ نہیں کرنی چاہیے، اسی کو تو پھر ہم افرائیت من اتخذ الہہ ہوا کہتے ہیں، یعنی نفس کو خدا بنانا. لیکن سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر تم خود سے محبت کرتے ہو تبھی تم دوسروں کو محبت دے سکتے ہو. جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ تم کسی کو کیسے دو گے؟ اسی لیے یاد رکھیے کہ جو لوگ دوسروں سے محبت نہیں کرتے نا، تو آپ غور سے دیکھیں ان کو قریب جا کر، وہ خود سے بھی بیزاری ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، سارے آگ میں جاؤ، خود سے بیزار ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ناوازار بیٹھے ہیں. تو وہ دوسروں کو کبھی میٹھا بول نہیں دیں گے. تو دوسروں کو محبت دینے کے لیے خود سے محبت کریں. واقعی آپ کو اپنے آپ سے پیار ہونا چاہیے. جو چیز آپ کے تھیلے میں ہے ہی نہیں، وقت پڑنے پہ اس کو نکالیں گے کیسے؟ بیگ میں جو جاتا ہے وہی نکلتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت عزت نفس ایک کامیابی کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک انتہائی اہم خصوصیت ہے. یہ انسان کے اندر گہرائی میں ملتی ہے، یعنی ان ڈیپتھ جب آپ کسی انسان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. اسے آپ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ضرور جملہ لکھیے. عزت نفس کیا ہے؟ آپ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں. میں یہاں چھوٹی سی بات کرتی ہوں. ایک شخص جو سب کے بیچ میں بیٹھ کے چرس پی رہا، ہوش کوئی نہیں ہے، کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، کیا اس نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھا؟ تو کیا اس نے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا؟ یہی انسان محنت کرتا رہتا تو ایک دن نیل آرمسٹرانگ کی طرح چاند پہ پہنچ جاتا. یہی انسان اگر اللہ کے دین کی دعوت دیتے دیتے 950 سال گزار دیتا تو نوح کہلاتا. لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو اتنا سستا بیچا کہ چند پڑیاں چرس کی اس کی زندگی کا خلاصہ بن گئی. تو مان لیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. کم از کم میں اپنے بارے میں کہوں تو مجھے تو اپنی ذات کی بڑی قدر ہے. میں تو کبھی کسی کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گی، میں کبھی اپنی صحت ضائع نہیں کروں گی، میں کسی کے لیے اپنا پلان ضائع نہیں کروں گی. آپ جب اپنے آپ کو فوکسڈ رکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں، आप देखिए, दूसरे लोग आपसे कभी भी गलत चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। जिस लाया गली ओदे नाल उठ चली। करने आप कुछ और जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई दूसरा मिल जाता है, वो कहता है इधर ना चले, वो कहता है आप इधर चले। क्या करें जी, जिधर आप कह दें। कब आएँ? जब मर्जी आएँ, 24 घंटे आएँ। आपके लिए हमारे इस दरवाजे हमेशा खुले हैं। भाई कैसे हो सकता है खुले हैं? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। क्या आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं? एनी टाइम? झूठ है ये, सच नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान अपनी कीमत पहचानता है ना, उसके अपनी ज़िंदगी के गोल होते हैं, उसका अपनी ज़िंदगी में एक विज़न होता है, वो एक मिशन के तहत ज़िंदगी बसर करता है। इसके बरक्स वो लोग जो एमलेस वॉन्डर ब्लाइंडली, या माहून का लफ्ज़ कुरान पाक में अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए इस्तेमाल किया है कि वो 40 साल तक वादी यतीम में भटकते ही रहे। तो याद रखिए, कुछ लोग फोकस्ड नहीं होते। आप उनसे बात करें ना, तो उनकी बात में से बात कैसे निकलती है? पहली बात देखिए कि जिनके अपनी इज्जत नफ्स नहीं होती ना, या जो खुद से ही खुश नहीं है, हमेशा गिले का अंदाज, शिकवा, शिकायती रवैया, नेगेटिव। सलाम करके पूछे क्या हाल है, तो हमारा क्या हाल पूछना है जी? भाई आप कैसी गुजर रही हो, क्या सुना है? कोई गुजरने वाली चीज़ है? बच्चों का क्या हाल है? भाई बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, बेगम क्या करिए? बेगम को मेरी परवाह कोई नहीं। आप जो बात करें ना, वो आगे से ऑपोजिट बात करेंगे, फोकस नहीं होते। और लोगों से बात करें ना, कभी आप किसी की फ़ोन कॉल ज़रा पास बैठ के सुने तो सही, आपको इस लफ्ज़ का मतलब समझ आएगा कि ज़िंदगी में अपनी कीमत ना पाने वाले कैसे इधर से उधर जाते हैं, और उधर से उधर भटकते भटकते वो किस तरह परेशान होते हैं और दूसरों को करते हैं। आप बात शुरू करें हालात की, हालात से वो बात जानवरों पे चली जाएगी, जानवरों से निकलते हुए सोने पे चली जाएगी, चांदी पे चली जाएगी, एंड पे आप देखेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो ज़िंदगी में अपनी कीमत पहचानना क्या है, कि इसको गुजारने का एक बहुत क्लियर कट मैप आपके पास हो। आपका डेली प्लानर, इसी तरह से आपका समझिए वीकली प्लानर, फिर उसके बाद से आपका मंथली, ईयरली, जैसे पीछे भी आपने बात की। तो अपनी कीमत पहचानी है, बड़े प्यार से पैदा किया मालिक ने आपको। आप अल्लाह तआला का मास्टरपीस हैं। दो आंखें हैं आपकी, कान हैं आपके, दिल दिमाग, खूबसूरत चीज़ों के मालिक हैं आप। इतनी कीमती चीज़ को छोटी सी चीज़ों में तो नहीं जीना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इज्जत नफ्स जो होती है ना, ये इंसान को ज़िंदगी में अपने से कुछ करवाने पे माइल करती है। वो दूसरों के हाथों में हाथ नहीं दे देते कि जिधर मर्जी हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा लो। वो अपने फैसले खुद करते हैं और बहुत सोच के करते हैं, बहुत डिटेल में सोचते हैं अपने बारे में। वो अपने बारे में गलत नहीं सोचते, क्योंकि उनको कुछ करके दिखाने का शौक होता है। तो इज्जत नफ्स जिस बंदे की महफूज होगी ना, ना वो दूसरे की गलत बात सुनेगा, ये भी लिख ले, और ना खुद गलत बात करेगा। सुनेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसको अपने नफ्स की कदर है। और करेगा क्यों नहीं किसी की बुराई? क्योंकि उसको पता है कि दूसरे की बुराई करते वक्त मैं तो खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। ऐसा बंदा गीबतों में वक्त जाया नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलेगा, इल्जाम नहीं लगाएगा, बेकारियात में, बहसों में वक्त नहीं गुजारेगा, गपशप उसकी जिंदगी में नहीं होती। वो इंसान अपने आप को कामयाब देखना चाहता है, तो लिहाजा वो अपनी एक एक चीज को देखता जाता है। आप खुद से पूछिए कि क्या आप अपने आप को पसंद करती हैं? क्या मैं वाकई अपने आप को पसंद करती हूँ? मुझे अपने वालदैन और अपने पस मंजर के पेशे नजर अपने से प्यार है? जो कुछ मैं हूं, क्या वही हस्ती, वही शख्सियत, वही हैसियत मुझे पसंद है? अपने आप से पूछा करें। ये जुमले दरअसल एक कामयाब इंसान की खुद कलामी का नुमाइंदा है। मुस्बत खुद कलामी मुस्बत इज्जत नफ्स के लिए जरूरी है। तो कभी फारिग बैठे ना, चले चाय का कप पीते हुए, खिड़की में से बाहर देखते हुए, आसमान की वसतों पे नजरें रखते हुए पूछा करें खुद से, क्या मैं खुद को पसंद करती हूँ? आप देखिएगा, ये चंद जुमले जो आप अकेले में बोलेंगी ना, इंशाल्लाह ये आपको अपनी कदर दिलवाएंगी। इसी तरह कामयाब इंसान के अंदर आप हमेशा खुद एतमादी और खुद एतबारी दोनों को लिखें। खुद एतमादी क्या है? कॉन्फिडेंस। और खुद एतबारी क्या है? सेल्फ ट्रस्ट। कामयाब इंसान के अंदर आप हमेशा कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट के एलिमेंट को बहुत स्ट्रांग पाएंगे। بس سٹرانگ ہوتا ہے ان کا. ضروری نہیں کہ وہ ان اچھے محسوسات کے ساتھ ہی پیدا ہو، یعنی کہ بچپن سے ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے بارے میں بہت پازیٹیو سوچیں، مگر یہ بات یاد رکھے کہ وہ جس طرح دوسری عادتیں اپناتا ہے نا، وہیں ایکسرسائز کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے، مشق کے ذریعے خود کو پسند کرنا بھی سیکھتا ہے. آپ ہو سکتے آج تک خود کو پسند نہ کرتی ہوں. اچھا، بعض گھنٹوں شیشے میں دیکھیں گے میری ناک موٹی کیوں ہے، میرے چہرے پہ پمپلس کیوں ہیں، میرا رنگ دبا ہوا کیوں ہے، بس گئے کام سے. ان کو لگتا ہے ڈیفیکٹڈ پیس ہے، اس کو ڈال دو کھاتے میں. خود سے نفرت کرتے ہیں لوگ؟ نہیں. آپ کوشش کریں کہ میں نے سیلف ریسپیکٹ کرنی ہے. کچھ لوگوں کو شروع سے ہی یہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. مثلاً ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اپنے اوپر لے لیں، مالدار والدین ہیں، عقل مند بھی بہت ہیں آپ کے پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس خوبصورت بھی بہت ہیں، اور بہت سے بچوں کو بچپن میں ہی ایسی حوصلہ افزا فضا مل جاتی ہے. چھوٹا سا کام کیا، استادوں نے اپریشیٹ کیا، دوستوں نے، بڑوں نے، ماں باپ کے دوستوں نے. ایک وقت آتا ہے کہ بچپن سے اس بچے میں ایک اعتماد آتا ہے. بعض لوگ بچپن سے ہی کامیاب ہونا شروع ہوتے ہیں، فرسٹ گریڈ، ٹرافی ملی، سرٹیفکیٹ ملا، کسی ٹیچر نے منہ پہ چاہے اسٹار بنا دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ کو ملتے ہیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عزت نفس آسانی سے مل جاتی ہے. اچھے ماں باپ یا اچھی ماں یا باپ، ان کی جو عقل مندی ہے نا، وہ بچوں کی شخصیت بناتی ہے، اور جو عقل مند پیرنٹس ہیں نا، وہ اپنے بچوں کی ہمیشہ مثبت حوصلہ افزائی کریں گے پازیٹیولی، تاکہ بچے کو خود اپنی قیمت کا پتہ اور وہ پھر اپنے آپ کو لے کر چلے. لیکن افسوس کی بات ہے، بعض بچے اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے. بعض پیرنٹس بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، دولت مند بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن ان کے بچے شکست خوردہ ثابت ہوتے ہیں، دے آر ناٹ سکسیزفل. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیزفل پیرنٹس کے بچے سم ٹائم ان سکسیزفل بھی ہوتے ہیں. ان میں اتنی خوبی نہیں ہوتی کہ ایون اپنے ماں باپ کے برابر بھی کھڑے ہو سکے. ان کو شرم آتی ہے، ان کے ماں باپ کو ان سے شرم آتی کہ مرے بچے اتنے بیکار ہیں. ویسے پیرنٹس دونوں ڈاکٹرز ہیں اور بچہ کلاس میں فیل ہو رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کی سپلی آ گئی. ہو سکتا ہے ایسے بچے پھر سوسائٹی میں اپنا کوئی مقام نہیں بنا سکتے. اب ایسے بچے جن کو آپ اس طرح کے حالات میں دیکھیں گے، جب اس قسم کے بچوں کی زندگی پہ آپ غور کریں گے نا، تو ان کو بہت سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے اپنے گھر میں دو لوگ ہو سکتے ہیں، ایک میں سیلف ریسپیکٹ زیادہ ہوگی، ایک میں کم. وجہ کہ ایک کو بچپن سے اپریسیشن ملی، ہر ایک نے اس کی تعریف کی، ماں نے بھی کی، باپ نے بھی کی، اور دوسرے کو ہمیشہ پیچھے ڈال دیا گیا. تو بچپن ہی میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو آگے کس طرح کرنا ہے. ماں باپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کی نفسیات جان کر ان سے ڈیل کرنا چاہیے. کچھ بچے فطری طور پہ بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں، تیز، سٹرونگ، ٹاکیٹیو. اب اگر پیرنٹس بھی اس کی ہر آنے جانے والے سے تعریف کرے نا، یہ بہت اچھا ہے، اس نے یہ آج سنایا، اس نے یہ صورت یاد کی، وہ اوور ہو جائیں گے. اور کچھ بچے جو شروع سے بیچارے دبے دبے ہوتے ہیں نا، پھر پیرنٹس اگر ان کو اور بھی تانے ہی دے، تو ہے ہی نکما، تو نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ ہی پیچھے ہے، تو وہ اور دب جائیں گے. آپ کے بچوں میں اگر دو مختلف شخصیات ہیں نا، تو جو پہلی سچویشن دی نا، اس کو ذرا سا اوپر ہاتھ دبائیں، صبر صبر، اتنا نہیں بھولنا، اور جو دوسرا نا، اس کو پھلائیں، نہیں نہیں میرا بچہ تو بہت اچھا ہے. اب عموماً ہمارے گھروں میں اس سے اپوزٹ ہوتا ہے، ایک کو تانے دیتے تو بڑا چلاک ہے، تو بڑا ہوشیار ہے، اور دوسرے کو کہتے تو بڑا سیدھا ہے. تو بھی ٹھیک کون ہے دونوں میں؟ آپ ہی ٹھیک ہے. تو بچپن بہت اہم ہوتا ہے ایسے بچوں کے لیے، بہت زیادہ انسان کو شروع سے کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ ناکام اور شکست کھائے ہوئے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں نا، تو ان کی زندگی میں عزت نفس کی کمی ہوتی ہے، خاص طور پہ مجرم، کرمنلز، ڈاکو، چور، لٹیرے. وہ اکثر کہیں گے بچپن سے عزت نہیں ملی، پیار نہیں ملا. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں تو نرا چور ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا چور بن کے دکھاتے ہیں. تو نکما ہی رہے گا، وہ کہتا ہے اب نکمے بن کے دکھائیں گے. تو نے تو فیل ہی ہونا، کہتا ہے پھر فیل ہو کے دکھائیں گے. یعنی اکثر ان کی زندگی میں نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عزت نفس بڑھانے کا جو جذبہ ہے نا، اس کے عمل میں ایک کامیاب شخص جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے کام کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک لفظ مجھے پسند نہیں ہے، ہمارے کلچر میں بہت بولتے ہیں मुझे कुछ की शरई हैसियत नहीं बताना, मैं फतवा दे रही हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। वो क्या है? सेल्फ मेड। सेल्फ मेड लफ्ज़ मुझे नहीं पसंद, आई डोंट नो वाई, क्योंकि हम सेल्फ मेड नहीं है, हम अल्लाह मेड हैं, अल्लाह ने बनाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी ये तो सेल्फ मेड बंदे हैं, इन्होंने पहली बनियान भी अपनी कमाई से खरीदी थी, इन्होंने तो बचपन से ही साथ जॉब की साथ काम किया। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि ये सब कुछ अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से होता है, अगर आप देखें तो बचपन से जवान होने के जो दरमियानी दिन होते हैं ना, बचपन से जवानी के दिन, इसमें बहुत सारों को बड़े लोगों के आगे हम्बल होना पड़ता है, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की बात मानना। माँ बाप कहेंगे आप ये करो वो ना करो, फिर माँ बाप उनको उनकी बुराइयों पे खामियों पे टोकते भी हैं, शोर ना करो तुम अभी छोटे हो, इसे मत छुओ, बैठ जाओ, गड़बड़ नहीं करो, तुम साथ नहीं जा सकते, ये जुमले आम हैं घरों में। अच्छा, ये बातें जहाँ बच्चों के लिए ज़रूरी भी होती हैं ना, बस दफ़ा ये बच्चों की पर्सनैलिटी को तोड़ देती हैं। मुसलसल अगर पेरेंट्स इस तरह के ऑर्डरिंग और तहक्कुमाना किस्म के जुमले बोलने वाले होंगे ना, तो बच्चा ज़हनी तौर पे परेशान हो जाता है, फिर इससे पेरेंट्स और बच्चों में जनरेशन गैप पैदा होता है। नाकाम लोग होते हैं, अपने बचपन कोई नहीं कोताहियों को इस कदर याद करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। मैं बात सिस्टर से सुनती हूँ, अक्सर लोग अपनी बातें दिल की करते हैं ना, तो किसी ने कहा मेरे बच्चे जब बालिग हुए ना, यानी बच्चियों का तो सबको समझ आता ही है ना, प्यूबर्टी है ये तो माँ का ही काम है, लेकिन लड़के बेटे जब उनमें असरात शुरू हुए तो कहती हैं कि मुझे इनको बताना पड़ा कि अब इसके क्या मसाइल है, इसमें तहारत क्या होती है, इसमें क्या। तो मैंने कहा बाप, कहती सवाल ही नहीं पैदा होता, बाप बेटे तो 10 मिनट साथ बैठ जाएं तो लड़ाई हो जाती है, और सबसे बड़ी बात बाप कहते हैं मुझे शर्म आती है। अल्लाह के बंदो, आपको शर्म आती है? भाई बाप को बेटे से बात करते शर्म आ रही है, बीवी को कह रहा है तुम इसको बताओ माँ होने के नाते, तो ये गलत तरीका होगा। वो बाप ने असल में अपना एक अजीब सा सुपरमैन किस्म का हैवला बनाया होता है ना बच्चों के तस्वर में, अब वो इतनी पर्सनल बात करना जिसमें बंदे को कंधे पे हाथ भी रखना पड़ सकता है, तो वो फिर बाप सामने नहीं आते, तो ये गलत रवैया है। इसी तरह बास माएँ अपनी बेटियों से नहीं ये बातें करती, कभी वो कहेंगी खाला इसको बता दे, अब तो खैर मेरे अल्लाह खाला बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जिस दौर की हम बातें करते हैं दूसरों से कहलवाती हैं माँ। कोई भी पर्सनल जिंदगी के चेंजेस जो भी होती हैं, कभी दोस्तों से लड़कियां पूछती हैं, कभी इधर से पूछती हैं, कभी उधर से, क्योंकि माँ बेटी का वो ताल्लुक ही नहीं है, तो ये भी गलत तरीका होता है। जब बचपन से इस किस्म का ताल्लुक होता है ना, तो फिर इसमें इंसान खुद से खुलता नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो दबता ही जाता है, दबता ही जाता है, और एक वक्त आता है कि जिंदगी में जो तब्दीलियां आती है ना, इंसान उसको फेस नहीं कर पाता। बस बच्चियों को मैंने जाना है कि वो कहती हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई तो हम समझे हम बीमार हो गए हैं, हमें कैंसर हो गया, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बताना नहीं, अंदर ही घुटते रहना, वो एक किस्म की अपने आप को नफसियाती तौर पे सिक फील करने लग जाती हैं। तो ज़िंदगी में बचपन ही से ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। अब जब कभी अपने बच्चे से बात करें, बार बार बच्चों की बात आती है, अब आपके भी बच्चे नहीं हैं मोस्टली, आप यंग गर्ल्स हैं, लेकिन आप मेरी इन बातों को सुनकर ज़रूर अपने बचपन में झांकेंगे। शख्सियत की तामीर होती तो बचपन में ही है ना, तो आप अपने बचपन को सामने रख लें या आपके जो बच्चे आपके सामने, उनके साथ आपका ताल्लुक बहुत ज्यादा न्यूट्रल होना चाहिए। बहुत दबा हुआ ताल्लुक आपके बच्चे को दबा देगा, बहुत ज्यादा खुला ताल्लुक वो आपके सामने उसको बदतमीज बना देगा, वो सुनेंगे नहीं आपकी बात। हमेशा अपने बच्चे को पॉजिटिवली एडमायर करें, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा चांद, मेरा टुकड़ा, चाहे जैसा भी हो, उसको प्यार दे, एतमाद दे। अच्छा, बच्चा जरा सा दबी हुई शक्ल का होना तो उठते बैठते कहेंगे कोजा काला, जरा सा भोली शक्ल होगी कहेंगे ये तो मेरा बुद्धू है, प्यार से कह रहे होते हैं। अच्छा, वो एक बार सुनेगा तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो, लेकिन जब हर दिन में घर का एक दो बंदा उसको बुद्धू कह देगा, सारी जिंदगी के लिए आपने उसको बुद्धू बना दिया, उसका एतमाद खो जाएगा। कोई जरा सा बड़ा डैशिंग बच्चा है, जरा नुमाया होने वाला है दूसरों में, तो चल तू बड़ा चलाक है, चल चलाकू बैठ जा। अच्छा, अब चलाक 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 दो चार बार कह के देखे, वो कहेगा मैं हूं ही चलाक, तो फिर चलाक बन जाएगा। 420 फ्रॉड, कितने बुरे लफ्ज हैं ये, लेकिन ये अमूमी तौर पर बोले जाते हैं, इससे बच्चे की इज्जत नफ्स खराब होती है। फिर आप देखिए कि जो लोग अपनी जात के अंदर उलझे होते हैं ना, वो बाहर के हालात को फेस नहीं कर पाते। आज भी जिंदगी में देखिए दुनिया में क्या कुछ नहीं बाहर हो रहा, लेकिन कई लोग सिर्फ अपनी अंदर की शख्सियत की उलझनों में घुसे हुए, इसलिए इसको पूरा नहीं कर पाते। तो लिहाजा नाकामियों से निकलने के लिए आपको पहले अपनी जिंदगी की कदर होनी चाहिए। आपको कैसे पता चले? चले, ये क्वेश्चन है कि इज्जत नफ्स की कमी है कि ज्यादती है ना, कुछ सिम्टम्स भी होती हैं, आप अपने लिए सोच लें। जो शख्स तवज्जो बहुत मांगता है ना, अटेंशन सीकर, बच्चे बाज़ माओं से बहुत तवज्जो मांगते हैं, माएँ कहती हैं ये इसकी आदत है, मैं किसी से बात करूँगी ना ये बार बार आके मेरे मुंह को हाथ लगाएगा, मेरी बात सुने, तवज्जो मांगता है बच्चा। अच्छा, इसी तरह बाज़ लोग शोर मचाते हैं बहुत, तौलिया चाहिए, तौलिया 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 तौलिया, खाना 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 खाना, रोटी रोटी रोटी, कोई खिदमत तलब करने के लिए शोर मचाना, मान लीजिए इज्जत नफ्स की कमी है, उसको इसकी केयर ही नहीं कि मेरे एक जुमले को चार दफा बोलने से सुनने वाले पे मेरा असर क्या रहा है। तो ये इज्जत नफ्स की कमी होती है। साइकेट्रिस्ट जो है ना, वो कहते हैं कि जो बिगड़े हुए मुजरिम होते हैं ना, खासतौर पर नौजवान टीन्स, वैसे तो जट और नाफरमाबरदार होते हैं, लेकिन अगर उन्हें देखा जाए तो हर वक्त एहतजाज एहतजाज। अच्छा, बाज़ बच्चों का पूरी जिंदगी का एक ही काम है एहतजाज, आपने हमें सही नहीं पाला, आप हमें पाकिस्तान क्यों ले गए थे, फिर आपने हमें वापस क्यों बुला लिया, आपने सारी जिंदगी हमारे ऊपर तजर्बे किए। एक माँ मुझे याद आती है, वो कहती मेरे बच्चे मेरे से नाराज हैं, क्यों, आपने हम पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, पहले हमें बाहर ले आए, फिर यहाँ जरा बड़े हुए तो कहा पाकिस्तान चले जाओ, 4 साल वहां रखा, वहां नहीं दिल लगा, करा वापस, आपने सारी जिंदगी हमें तजर्बों पर डाल दिया, वो नाराज है अपने माँ से, बाप से भी होंगे, तो एहतजाज एहतजाज। लेकिन अगर आप देखें ना, तो वो ऊपर एक सख्त खोल सा जो बुनते हैं ना, उसके अंदर एक नरम इंसान होता है जो हमेशा दूसरे पे रिलाई करना चाहेगा। बहुत सारे लोग हैं आज भी, वो एक अपना कपड़ों का जोड़ा नहीं खुद डिसाइड कर सकते कि मुझे क्या पहनना है, खाना क्या मुझे आई डोंट नो, जाना किधर है आई डोंट नो, क्या खरीदना है क्या लाएं आई डोंट नो। तो ऐसे शख्स हमेशा फिर दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये लोग किसी के नजदीक नहीं होते क्योंकि इन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता। माजी में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जिसकी वजह से मुस्तकबिल में भी ये लोग खराब होते हैं, और ऐसे लोग बाज़ अपनी इज्जत नफ्स की जो कमी है ना, उसको छुपाने के लिए जुल्म पे आ जाते हैं, जारहाना होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एक लड़की है, उसकी शादी किसी ऐसे मर्द से कर दी कि जिसमें कोई कमी थी, कमी थी कह रहे, वो कोई भी हो सकती है, इससे में मुझे आपको सरोकार करनी, मतलब गरीब है या जिस्म में कोई नक्स है, कुछ भी कमी पेशी, लड़की उससे ज्यादा अच्छी थी, लोगों ने क्या, कोई बात नहीं, दब के रहेगा, समझ आई बात, दब के रहेगा लड़का, तो चलो हमारी लड़की खुश रहेगी। हुआ बिल्कुल उसका ऑपोजिट। अब देखिए, वो मर्द जो घर बैठ के शराब, चले शराब ना भी पिए, पाकिस्तान में रहते हुए चर्स पीते हैं ना, सारा दिन उनकी बीवियां काम करती हैं, आप क्या सोचते हैं घर जाएंगे तो शायद वो उसके पाँव दबाएगा कि तुम्हारी मेहनत से घर में रोटी आई, नहीं, वो मारते हैं, शक करते हैं, किधर गई थी ये, किससे बात की है, काम के बाद किधर गई, इज्जत नफ्स की कमी है। जो मर्द अपनी बीवी से लेस होता है ना, जनी तबीयत में या उसके अंदर गुण कम होते हैं, वो हमेशा अपनी बीवी पे सूखा रोप डालेगा। जो बंदा ऊंची बोले गुस्से में चीखे, ऐसा से कमतरी का शिकार है, पीछे भी इस पे बात हुई थी। तो ऐसे लोग इस तरह करते भी क्यों हैं, ताकि लोग उनसे दूर रहें और दुख पहुंचे इनको, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि जिससे लोग फिर उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, फिर बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं ऐसे लोग, जूद रंज होते हैं, ये भी लिख लें पहचान। इज्जत नफ्स की कमी वाला बंदा जरूर नाराज होगा, छोटी छोटी बात पे दुखी, क्योंकि पहली इज्जत नफ्स की कमी है ना, तो जरा सा कोई उसको इग्नोर करे ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा कमी लगती है, क्योंकि इसका अपने ऊपर एतमाद नहीं है, अपने बारे में अच्छी राय नहीं रखता, जरा सी बात पे मुंह फुला लेगा, बिगड़ जाएगा, और एक और सिम्टम, हसद में मुबतला हो जाएगा, तकाबुल बहुत करेगा। इसके बरक्स जिसके अंदर पॉजिटिव इज्जत नफ्स होती है ना, वो किसी बात पे गुस्से में नहीं आएगा, सीख पा तो नहीं होगा कम से कम, झगड़ेगा भी ना तो हल्की बात करेगा, और किसी को एक बार दो बार कह के बात छोड़ देगा, जिद नहीं करेगा, इसरार नहीं करेगा, हकायक को सरकमस्टांसिस को देखेगा, दूसरों पर हर वक्त मुतालबे नहीं रखेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए, बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जो कीमती चीजों की नुमाइश करना पसंद करते हैं, लोगों के सामने अपनी जायदादों का जिक्र करते हैं, एसेट्स का, असासे, हमारी इतनी ज़मीनें, हमारे इतने प्लाजे, हमारी इतनी चीज़ें, वो अपने दर्जे का एहसास दूसरों को दिलाते हैं। ये नमूदो नुमाइश क्या बताती है, इस बंदे में इज्जत नफ्स की कमी है। कमी क्या है कि कोई इसे मालदार नहीं कहेगा, अच्छा मुझे कोई नहीं कहता, अब मैं बताता हूँ। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों में अपनी बातों के चर्चे करते हैं, बस तो हजत शुरू कर दी है, बस अब तो सिर्फ 8 नफल थे, अब तो 10 पढ़ता हूँ, यानी नेकियों में, दुनिया की चीजों में, अपनी चीजों को पेश करते हैं। हालांकि अगर आप देखें कि इंसान ये सोचे कि मैं तो अल्लाह ताला का मास्टर पीस हूँ, जिस अल्लाह ने दूसरों को बनाया उसने मुझे भी बना दिया, मुझे सोचने की ताकत दी, ऐसा बंदा फिर जिंदगी में तजुर्बे करता है, अपने माहौल को बदलने की कोशिश करता है। आप देखिए ना कि इंसान में क्या कुछ है, सोच सोच सकते हैं ना मेरा, आप देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना। फिर इसी तरह देखिए, आप मोहब्बत कर सकते हैं, आप नफरत कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, कभी आप बैठ के अपने सकते सकते सकते, लेकिन आप 100 से ज़्यादा काम कर रहे हैं एक वक्त में। जब आप इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। फिर आप याद रखिए कि खुद एतमादी जो बंदे में आती है ना, ये कामयाबियों के तजुर्बों से उभरती है। कभी आप अपने किसी बच्चे को दबा हुआ देखें ना, तो खुद ही उसको जिता दें, खेलें उसके साथ, फिर थोड़ा सा पीछे हो जाए, फिर वो जीते, फिर कहे मेरा बच्चा जीत गया। अब आपका बच्चा आपके साथ कैसे मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसको जिताएं। बहुत ज़रूरी है माओं का साइकोलॉजी पढ़ना, यकीन करें। बीवियों का तो खैर बहुत ज़रूरी है, पर बीवियों को जब मिलते हैं तो वो पहले से पुख्ता हो चुके होते हैं। फिर भी कोई हौसला मंद बीवियाँ होती हैं, 5-10 साल में मर्दों को चेंज कर लेती हैं। औरत में अल्लाह ने बड़ी एक अजीब सी मोल्डिंग पावर रखी है, वो जैसे लोहा नरम हो जाता है ना गर्म होता है, तो जिस बंदे के आगे आप पिघलने लगते हैं ना, वो आपको बदल लेगा। मर्द की कमजोरी औरत है, औरत को देख के वो पिघलता है, तो औरत उसको बदल सकती है। शर्त यह है कि वो वक्त देख कर बात करे। लोहा नरम देखो, फिर उसके ऊपर बात करो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जिन लोगों में इज्जत नफ्स की कमी होती है ना, वो मुतसबजब रहते हैं, समझ गए, डबल माइंडेड, करूं कि ना करूं, कोई नया काम शुरू करना, उनके लिए जो है शीर लाना है, अल्लाह अकबर, रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं, उनको पीछे से पता ही नहीं, मैं तो कभी कामयाब नहीं हुआ, इसमें कैसे होऊंगा। अच्छा, बेगम कहेंगी ये कारोबार शुरू करे, वो कहता रहने दो, जो थोड़ी सी रास रहेगी वो भी डूब जाएगी। अच्छा, क्या ख्याल है, ज़रा घर ले लें, कहता नहीं रहने दो, फिर इसके कर्जे में फंस जाएंगे। यानी वो कोई नया फैसला नहीं कर सकते। और ये सच है कि एक कामयाबी दूसरी कामयाबी को जन्म देती है। कामयाब इंसान हमेशा अपनी माजी की कामयाबियों को देखता है, वो नाकामियों को भी जहन में लाता है, जो गलतियाँ की होती है उससे सीख लेता है, उसको एक सीढ़ी बना लेता है कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अपोजिट है। जो लोग इज्जत नफ्स की कमी का शिकार है ना, वो माजी की नाकामियों को तो याद रखते हैं और कामयाबियों को भुला देते हैं। ऐसे लोग हमेशा जज्बातियत के नाम पर अपने दुश्मन बन जाते हैं, खुद को जलील करते हैं। एक कामयाब इंसान है ना, मुस्बत इज्जत नफ्स के कि माजी में 10 बार भी नाकाम होगा ना, वो कहेगा नहीं, अब 11वीं बार मैंने कामयाब होना है, कई नाकामियों के बाद ही तो फलाम भी तुम कामयाब हुआ था ना। वो आपने कहानी सुनी हुई है ना, वो 10 दफ़ा जंग में हार के आके बैठ गया, तो एक जगह देखा एक चींटी है, वो ज़मीन से ऊपर जा रही है, दीवार तक जाती, ऊपर जाती, फिर गिर पड़ती है, बार बार यही अमल हो रहा है। कहा बस ये चींटी मुझे सिखा गई कि इतनी दफ़ा गिरी, आखिरी बार वो ऊपर जाने पर कामयाब हो गई। तो आप और मैं, ज़रूरी है कि अपने आप से फ़ायदा उठाएं। बस दफ़ा बचपन की बातें बचपन में अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़े होकर भी लोग वही करके शुरू करते हैं, ये भी इज्जत नफ्स की कमी है। अपनी सलाहियतों का बेहतरीन जायज़ा लेने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि मुस्बत खुद पसंदी पैदा करने के लिए अपने फ़ैसले अक्ल की बुनियाद पर करें, जज्बात की बुनियाद पर नहीं। जवानी में जज्बात गालिब आ जाते हैं, अक्ल दब जाती है। जज्बात या इमोशंस या सेंटीमेंट्स कह लीजिए कि इंसान के सब कॉन्शियस तहत शऊर जो होता है ना, उसके अंदर खुद ब खुद हो रहे होते हैं। हम बैठे हुए कई फैसले नहीं कर रहे होते, प्लान्स में हम पता नहीं ख्यालों में कहाँ पहुँचे होते हैं। अगर जज्बाती होकर सोचेंगे ना तो गलत फैसले करेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल कोल्ड फैक्ट्स की बुनियाद पर इमोशन फ्री होकर फैसले करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कामयाब इंसान अपनी मौजूदा हालत से मुतमईन होता है। मसलन आप पढ़ने आ रहे हैं ना, आप खुद से पूछें मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप जो करने आए आपको मिल गया, कल फिर आने का जरिया बन जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर आपसे सुनाए जी आज क्लास कैसी रही, नहीं मैं तो फोकस नहीं हुई, मुझे तो नींद ही आती रही, तो आप मान लेते हैं कल आपके लिए आना मुश्किल होगा। बस दफ़ा इस तरह भी इंसान नाकाम हो जाता है कि वो अपनी मौजूदा हालत से खुश नहीं रहता, मुतमईन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, खुद इज्जत नफ्स को पाने के लिए खुद कलामी करें, अपने जहनों में तरतीब दें चीज़ों को। जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो अक्सर क्या कहते हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मगर मैं इसे किस तरह करूं, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही, तुम मेरे हालात नहीं समझती, आपको तो मेरी सिचुएशन की समझ ही नहीं आती। हाँ, मैं चाहती तो थी लेकिन कर नहीं सकी। जबकि एक सक्सेसफुल, एक कामयाब शख्स क्या कहता है, यस आई कैन डू इट। अब लिख कर देख लीजिए, लव्स इम्पॉसिबल, इसको अलग अलग लिखें। आप आई लिखें, फिर गैप दें, फिर एम लिखें, फिर गैप दें, फिर आगे इकट्ठा पॉसिबल लिख लें। क्या निकला अंदर से? हर इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल लिखा होता है। हर टास्क आपको बता रहा है कि यस आई एम पॉसिबल, तुम्हें मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं कर रहा हूँ। इसी तरह अक्सर जुमला बोलेंगे लोग, मैं तैयार हूँ, अगली बार कोई गलती नहीं होगी, डोंट वरी। कई लोग हैं जो वो गलतियाँ करते हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है वो हर गलती के बाद कहते हैं आइंदा नहीं करेंगे। बात समझ रहे, मैं ठीक हूँ। हाँ, फिर इसी तरह से आप देखें कि आपको एक और पहचान बताती हूँ अपनी या किसी की। जब किसी इंसान के किसी काम की कोई तारीफ करे, आप उसको गौर से देखा करें। अगर वो मुस्बत इज्जत नफ्स रखता है ना, तो वो इस तारीफ को सुनकर थैंक यू, और इसको लग रहा होता है कि मेरी तारीफ सही हुई है, हक समझता अपना, और क्या कहता है, शुक्रिया, जजाकल्ला, मेहरबानी, आपने सराहा, ऐसे कहता है। अच्छा, जो नाकाम इंसान होते हैं ना, कोई उसकी तारीफ करे ना बेचारा, तो वो उसको शर्मिंदा कर देते हैं कि जैसे उसने झूठ बोला है। अरे मियाँ, मैं कहाँ इस लायक था, ये मैंने क्या, ये तो बस खुद ही हो गया। अरे मैं तो इसको छोड़ने वाला था, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो वो अपनी इस कामयाबी की तारीफ भी नहीं सुन सकते, उनको ये बात बुरी लगती है। फिर आप देखिए कि जो दुनिया के मशहूर लोग हैं, आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी। हेलन केलर का नाम सुना आपने, अंधी भी थी और बहरी भी थी। इसने अपने जैसे दूसरों के लिए क्या कुछ किया, जरा इसका नाम आज जाके गूगल में पढ़िएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि आइंस्टाइन क्या किया था उसने, ये भी आप करके आए। जरा आइंस्टाइन का नाम लिखे, आप ये आइन आइन वाला ना लिख दीजिएगा, उर्दू वाला, इंग्लिश में लिखिएगा। हाँ, फिर इस तरह आप देखिए कि ये कहते हैं कि ये इंटर के इम्तिहान में फेल हो गया था। गलीलू कौन था, क्या बनाई थी इसने, गलीलू दूरबीन। हाँ, टेलीस्कोप। आपको पता है कि इसके पेरेंट्स कह रहे थे कि तुम और कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम दर्जी बन जाओ, कपड़े सीने सीख लो। अल्लाह ने उससे कितना बड़ा काम ले लिया। हाँ, फिर इसी तरह आप देखिए, अनवर सादात का नाम आपने सुना होगा, एक देहाती बच्चा था। इन सब ने लिखा है कि वो बचपन में भी अपने आप को कभी हकीर नहीं समझते थे, उनको पता था हम बड़े होके कुछ करेंगे। क्योंकि जो जाती तौर पे मुस्बत इज्जत नफ्स के मालिक लोग होते हैं ना, वो कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते, इनको कामयाबियों का पता होता है। तो लिहाजा बैंड पे फिर मैं और आप अपना एक जायजा लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास क्या है। पहली बात है कि जितनी बातें आज हमने इस टॉपिक पे की, इसको बार बार पढ़ें। एक दफ़ा सुनने से बात समझ नहीं आती, बार बार पढ़ें, कुछ अरसे के बाद फिर पढ़ें। फिर आप ये सोचें कि अगर मैं आज तक ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कामयाबी किसी को विरसे में नहीं मिलती, मुझे कामयाबी मिलेगी। फिर इसी तरह से आप अपने लिए एक मेयार रखें, अपने लिए कोई दो चार नुक्ते लगा के ऊपर अपना नाम लिख लें, आई विल रीच देयर। फिर इसी तरह से आप जैसे भी हैं खुद को कबूल करें, अपने आप को पसंद करें। ये जुमला लिखें अपने नोट्स में बार बार, आई लाइक माई सेल्फ, अपने आप को कि आई लाइक यू, आई लव यू, आई एडमायर यू, ठीक है। फिर इसी तरह से आप अगर अपने आप के अंदर खुद सरी देख रहे हैं कि आप तो किसी को नजरों में नहीं लाते, तो फिर जरा खुद को लिखें, आई कैन कंट्रोल यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। यानी खुद से बातें करें, इस तरीके से करें कि आपको फायदा होगा। फिर इसी तरह अगर आप मुस्बत इज्जत नफ्स चाहते हैं ना, तो क्या करें, अच्छे कपड़े पहने, शो के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को एक डिसेंट लुक देने के लिए, क्योंकि आपका जाहिर आपके बातिन की अक्कासी करता है। इसको नजरअंदाज मत करें, इससे फायदा क्या होगा कि आपके अपने अंदर एक इज्जत आएगी। मतलब आप देखिए ना, खुद देखें कि आपने सात रंगों के कपड़े पहने हो, शलवार किसी और रंग की पहनी हुई है, कमीज कोई और है, बाल बिखरे हुए हैं। यानी यहाँ आने से पहले जिस साल में आप घर होते हैं, वही हुलिया जहन में रख लें जिसको आपके बेचारे घर वाले बर्दाश्त करते हैं। बड़ा हौसला वैसे हमारे घर वालों का, जिस हाल हुलिया में वो हमें बर्दाश्त करते हैं, एक तरफ से लहसुन की बू आ रही है तो दूसरी तरफ से प्याज का तड़का है। हाँ, ऐसे कपड़ों में रहने से बंदे की इज्जत नफ्स कम हो जाती है, माने के ना माने। जिस वक्त आप अपने आप को डाउन फील करें ना, आप अपनी वार्डरोब में सबसे पसंदीदा अपना जोड़ा निकालें, उसको पहने, कंघी करें, साफ सुथरे हों, آپ کہتے ہیں پھر کریں کیا، کہاں جائیں، گھر بیٹھے اور کدھر جانا ہے، ہمارے یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کے لیے پہنو. ہمارے پاس ایک سسٹر تھی، سکھ سے مسلم ہوئی، تو وہ بہت تیز میک اپ میں اور بہت اچھی جس طرح لک میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو درس میں آئیں تو اس نے ایک بات کہی جو مجھے اس کی بہت اچھی لگی، جس کو میں سمجھ گئی، مجھے نہیں پتا اس کی باقی بات کسی نے سمجھی نہیں. تو ایسی کوئی بات چیت چل رہی تھی تو کہتی باجی میں درس چاہیے، مینوں نہیں پتا تھی اتنے درس جو سادے سادے کپڑے پاندے، تو میں تو اج بڑا لال جوڑا پا کے آئی، بالکل وہ شادی والا تیار ہو کے درس میں آئی تھی نا. تو پھر کہیں گے باجی میں تو ویسے اپنے آپ چالو کرن لی تیار ہوندی، باجی میں جدو منہ تو لیندی تو میں میک اپ کر دی تو میں ٹیشن مشن ہو جاندی نا، تو پھر میرا کام کرن تے دل کرتا. تو واقعی یہ سچ ہے، جس وقت آپ کا بستر سے نکلنے کو نہ دل کرے، آپ بہترین جوڑا نکالے جس کو پہن کے آپ نے لیٹنا ہی کوئی نہیں ہے، سستی تو خود ہی دور ہو جائے گی، تو اپنے لیے پہنے. لوگ کہتے ہیں سب کچھ کر کے اب جائیں کدھر، ہمارے گھروں میں تصور کیا کہیں جاتے ہوئے پہننا، یعنی ہم گھر میں سب سے نکمے اور باہر جاتے ہوئے جہاں اوپر چاہے بایا پہننے، بعض لوگ نکاب بائے میں سارا دن پھرتے رہیں گے، اندر اچھے کپڑے پہنے بھی اتارا کیوں نہیں، کہتے باہر تو موقع ہی نہیں ملا اتارنے کا، تو اب گھر آتے کیوں اتار دیے کہ اب گھر میں تھوڑی کو اچھے کپڑے پہننے، اپنے لیے پہنے. مجھے کسی نے کہا کہ مجھے آپ سے باتیں کر کے کچھ کسی موقع پہ اسٹوڈنٹ تھی، تو کہیں گے آپ مجھے سمجھ آئے کہ اپنے لیے پہننا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اپنے لیے پہنو، پھر کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اس کی وہ دیکھ لے آپ کو کیا لگے، دوسروں کے لیے نہ پہنو. تو یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس لائے گی. پھر ایک اور کام اپنے لیے کریں، تھنگس ٹو ڈو میں اگر آپ کو اپنے اندر کمپلیکس لگ رہا ہے کچھ، تو جب فون سنے نا تو اپنا نام بولیں. جیسے مثال ہے کہ آپ اپنا نام خود لیں، ٹیلی فون سن کے ہم کہا السلام علیکم کون، اپنا پورا نام لے، پورے کانفیڈنس سے لے. کیسے لوگ فون سن کر بولتے کیسے ہیں، وہ جو آفیشیل کالس میں تو آپ بولتے ہی ہوں گے، کام میں، گھر میں، عام پہ بھی بولیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر اپنے لیے محبت پیدا ہوگی نا. پھر اسی طرح ایک تیسرا کام کریے اپنے اندر کانفیڈنس لانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں اور اچھائیوں کی لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ موٹیویٹ ہوں گے. اور اس میں وہ باتیں سب سے اوپر لکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے آپ کو دی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، ہے تو سب کچھ ہی گاڈ گفٹڈ لیکن بغیر مانگے مل گئی. پھر اس کے نیچے سیکنڈ لیول پہ وہ اپنی خوبیاں لکھیں جو آپ نے خود ایکوائر کی. دو طرح کی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ایک وہبی ہیں ایک کسبی ہیں. وہبی کیا، اللہ نے دے دیا الوہاب، نہیں نکنت الوہاب، خود ہی دے دیتا ہے، کسی کو شکل اچھی دے دیتا ہے، کسی کو لکھنا خوبصورت دیتا ہے، کسی کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے. ایک ہوتی کسبی، کما کے لیں، یو ارن دیٹ، اس کی پھر سیکنڈ لیول پہ اس کی لسٹ بنائیں کیا آپ نے لکھا. پھر آپ لکھیں کہ اچھا میں نے یہ کوشش کی تو میں کامیاب ہو گئی، میں نے محنت کی تو میری تجوید اچھی ہو گئی، اچھا پہلے میں کیسے قرآن پڑھتی تھی اب میرا بہتر ہو گیا الحمدللہ، پہلے ترجمہ یاد نہیں ہوتا تھا میں نے محنت کی تو ہو گیا. تو یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس لائے گی، ٹھیک ہے. تیسرے لیول پر اپنے ارادے لکھیں، میرے کیا پلانز ہیں، ارادے کیا میری زندگی میں، میں نے کرنا کیا ہے، وہ لکھیں، ٹھیک ہے. پھر ایک چوتھی ٹپ نوٹ کریے اپنے اندر مثبت خود اعتمادی یا عزت نفس پیدا کرنے کے لیے، اگر کسی اچھے کام پر کوئی آپ کو مبارکباد دے تو نرمی اور خوش دلی سے اسمائل کے ساتھ شکریہ کہیں. اچھا ہم تو اگلے کو شرمندہ ہی کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں اپنی تعریف واپس لیتا ہوں، ایسے لگتا ہے اس نے غلط بندے کی تعریف کر دی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو لوگ اپنے اندر کانفیڈنس نہیں پاتے یا عزت نفس کی کمی ہے، وہ کیا کریں، کسی میٹنگ میں، کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں جائیں نا، تو سب سے پہلی صف میں بیٹھیں، فرنٹ رو میں آ کے ٹیچر کے سامنے بیٹھیں، کسی جگہ بات کرنے کا موقع ملے تو نمایاں نظر آئیں، وہاں کچھ سننے کا، بولنے کا، سوال کرنے کا موقع ہو تو اسے آپ دیکھیں گے کہ وہ الرٹ رہیں. پیچھے رہنے والے دب بھی جاتے ہیں، وہ ایسا ایسا کھسک ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹھنے نہ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر چھٹی ٹپ کیا ہے، باوقار انداز میں چلیں، چال میں ایک خاص وقار پیدا کریں، رفتار تیز کریں، ایسے نہیں لگے نئے نئے بیماری سے اٹھے ہیں. کچھ لوگوں کی چال دیکھ کر لگتا ہے یہ زندگی میں کچھ نہیں کریں گے. ہاں اللہ کے نبی کا سینہ کھلا ہوتا تھا، تو آپ کے اٹھنے میں، چلنے پھرنے میں ایک مقصد نظر آنا چاہیے. پھر اسی طرح اپنا ایک باطنی معیار بنائیں، اپنے انسائٹ کو چیک کریں، کیسے، دوسروں سے اپنا مقابلہ کبھی نہ کریں، اپنے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، زندگی میں، پروفیشن میں، سپیچ میں، رویوں میں، ہر جگہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر لانے کی کوشش کریں. پھر آٹھویں ٹپ کیا ہے، جب بات چیت کریں نا تو سلینگ لینگویج کبھی نہ بولیں، مثبت گفتگو کا استعمال کریں. جس وقت اپنے بارے میں آپ کسی سے بات کریں تو خود کو کبھی کمتر بنا کر نہ پیش کریں. موسٹلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، میں تو بیوقوف، میں پاگل، मैं निकम्मा, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। ऐसे जुमले निकाल के फेंक दें, मुझे अकल ही कोई नहीं, मेरी तो मत ही मारी हुई है, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो पागल हूँ, ये सब जुमले निकाल के फेंक दें, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और काम करें, अपनी ज़ात को निखारने के लिए एक प्रोग्राम बनाएं, कागज़ पे लिखें कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, अपने रवैये बेहतर करने हैं। फिर 10वीं खूबी अपने अंदर क्या लाइए कि मुस्कुराना सीखें। स्माइली फेस सबको अच्छा लगता है, और याद रखिए मुस्कुराहट वाला चेहरा होता है ना, ये हमदर्द चेहरा होता है, वो जाहिर करता है मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक होगे, ओके। यानी अपने आप को दूसरों के लिए खुशियों का पयाम्बर बनाएं। आप देखेंगे जब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आएंगी, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एतमाद बढ़ता जा रहा है। तो ये चंद बातें थी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी देखिए, झूठी तारीफ, एग्जेजरेशन वाली तारीफ, मुबालगा वाली तारीफ, बिल्कुल ही वो खुशामदाना तारीफ, यो तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ करे तो अल्लाह के नबी सल्लम ने इतनी प्यारी दुआ सिखा दी कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो क्या कहेंगे आप, चले मेरे साथ दोहराएं। आज आप ये दुआ भी सीख कर जाएं, और इसको अपने होमवर्क में शामिल कर लें, अगली दफ़ा इसको मिल के पढ़ें। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून वग़फिर ली मा ला यालमून वजअलनी खैरम मिम्मा यजुन्नून। कितनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह मुझे ना पकड़ उस पर जो ये कह रहे हैं, यानी ये जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे मुझे ना इसका गुनाह देना, मैं तो नहीं इनको कह रहा कि मेरी तारीफ करें। वग़फिर ली मा ला यालमून, और जिन बातों का इनको पता ही नहीं है, यानी मेरी वो खामियां, मेरी कमियां, जिसका इनको नहीं पता, तो फिर मेरी वो तू माफ़ कर दे। समझ रहे, यानी कितनी खूबसूरत दुआ है अगर आप इसके मानी पे गौर करें तो। और तीसरी, वजालनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, मुझे उससे बेहतर बना दे जो ये मेरे बारे में गुमान करते हैं। और यकीन करें, लोग जब आपकी तारीफें करते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि इनको कितना कम पता है, ये वाकई नहीं जानते कि एक बंदे के अंदर कितनी कमी है। तो हमेशा तारीफ को मैनेज करना सीखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फिर, जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।